ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें बेंगलुरु मेट्रो का तीसरा चरण, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और पुणे मेट्रो रेल का पहले चरण का विस्तार शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब 21 शहरों में मेट्रो रेल की सुविधा है, जबकि 10 साल पहले यह केवल 5 शहरों में थी। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल नेटवर्क लंबाई के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। श्री वैष्णव ने कहा कि बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना का तीसरा चरण 2029 तक शुरू होगा। इस चरण में लगभग 45 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन जोड़ी जाएगी, जिससे बेंगलुरु शहर के दक्षिणी हिस्से, बाहरी रिंग रोड पश्चिम, मागदी रोड और आसपास के इलाकों में मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र में ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना का 29 किलोमीटर का गलियारा वर्ष 2029 तक चालू होगा। इसमें ठाणे के पश्चिम में 22 स्टेशनों के साथ साथ बनाया जाएगा। वहीं पुणे मेट्रो के पहले चरण का विस्तार करने से स्वारगेट से कटराज अंडरग्राउंड लाइन तक सड़क यातायात की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना फरवरी 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने मंत्रालयों और विभागों में कई उच्च स्तरीय नियुक्तियों को मंजूरी दी है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। कोयला मंत्रालय में अपर सचिव नागराजू मद्दीराला अब वित्तीय सेवा विभाग के सचिव होंगे। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज गोविल व्यय विभाग के सचिव होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह रक्षा विभाग में विशेष कार्याधिकारी बनाए गए हैं। वे इस वर्ष 31 अक्टूबर को अरमानी गिरधर का कार्यकाल पूरा होने के बाद रक्षा विभाग के सचिव का पदभार संभालेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 3 चरणों में होंगे। हरियाणा विधानसभा का चुनाव एक ही चरण में 1 अक्टूबर को होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में मतदान कार्यक्रम की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान तथा दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे तथा अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 87 लाख से अधिक मतदाता 90 सदस्यीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। मतदाताओं के लिए 11,800 से अधिक मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। भारत आज तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल माध्यम से मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी ग्लोबल साउथ देशों को आमंत्रित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान, सांगठनिक चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा पदाधिकारियों की यह पहली बड़ी बैठक है। सरकार नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों तक किसानों की पहुंच बनाने के लिए रेडियो पर एक कार्यक्रम किसानों की बात आरंभ करेगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की तर्ज पर होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कार्यक्रम सितंबर में शुरू होगा। श्री चौहान ने कहा कि उनके साथ कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजेकर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भाजपा ने कल 2 घंटे के लिए चक्का जाम किया। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए 12 घंटे की हड़ताल की। वाम मोर्चा और कांग्रेस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आज पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में संयुक्त रैली करेंगे। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत के 84 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित होंगे। ये पहला अवसर है जब सर्वाधिक 47 भारतीय एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस दल में 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत प्रशिक्षण मिला है। कई खिलाड़ी खेलो इंडिया गेम्स से भी चुने गए हैं। टोक्यो में हुए पिछले पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।